शांति। आज हम सभी के बीच में आदरणीय राजू भाई जी पधारे हैं। हमें बहुत ही खुशी हो रही है आज इनको देख करके, क्योंकि हम सभी इनके साथ जुड़े हुए ही रहते हैं। आप सभी जानते हैं हम सभी के पास जो बाबा की मीठी मीठी प्यारी मुरली पहुंचती है, तो वो पहुंचाने वाले हमारे पास राजू भाई जी है, जो कि मुरलियों को भेजने की सेवाएं करते हैं, और साथ साथ में जो मुरली में विशेष सार होता है, वरदान होता है और स्लोगन होता है, वो सब भी आपकी बुद्धि, एकाग्रता की बुद्धि के द्वारा और दादियों की प्रेरणा से आप सब, हम सभी को मुरली सरल पड़े इसके लिए वो हमारे लिए रोज की ये सेवाएं भी करते हैं। और आप ग्राम विकास जो विंग है हमारा, उसके आप नेशनल हेडक्वार्टर के कोऑर्डिनेटर हैं, और साथ साथ में जो हमारे पास पत्र पुष्प पहुंचता है हर मास, तो वो भी हमारे पास पहुंचाने का सेवा, वो लिखने का, पहुंचाने का सेवा, हमारे तक उसमें क्लासेस डालने का, ये सारा ही सेवाएं राजू भाई जी करते हैं। तो ऐसे हमारे साथ रोज की हमारी जो मुरली, जो हमारा प्राण है, वो हमें, हमारे तक पहुंचाते हैं, ऐसे हमारे बीच में राजू भाई जी पधारे हैं। तो इनके लिए हमें बहुत ही खुशी है, हम बहुत ही इनका स्वागत करते हैं। सभी एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे।
ओम शांति। अभी अभी जो गीत बज रहा था वो आज की इस क्लास का सार था। सभी ये गीत दिल से गाते हो ना, सबके दिल की आवाज है। थोड़ा एक लाइन बजाओ और सब गाओ इसको, गीत को देखो क्या गीत के शब्द हैं।
जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, आपकी पतवार तुमको के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण।
हम सबके दिल की आवाज, जिसने हम सबको इतनी श्रेष्ठ महान जीवन दी है, उसको हम क्या रिटर्न दे सकते हैं। सब कुछ सबने अर्पित किया है बाबा को, प्रवृत्ति में रहते हुए अपने आप को समर्पित समझते हो है पक्का कि समर्पण अलग है। कह देते हैं समर्पित बहने हैं, समर्पित भाई हैं, लेकिन प्रवृत्ति में रहते हुए सब कुछ बाबा को अर्पित कर देना, ये संपन्नता का एक बहुत ऊंचा कदम है। अगर हम संपन्न बनने का लक्ष्य लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारा सामने इस पढ़ाई का लक्ष्य हर एक के सामने रहता है। क्या लक्ष्य है सबकी पढ़ाई का? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो इतने ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि कितनी सहज है। भक्ति के अंदर तो हम सिर्फ गाते आए, ये तन, ये मन, ये धन सब तेरा है, लेकिन उन मूर्तियों ने तो हमारी आवाज सुनी नहीं। हमने कहा और फिर उस पर अपना पूरा अधिकार रखा। संगम युग पर जब बाबा डायरेक्ट आते हैं तो अपने बच्चों को सिर्फ स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे तुमने जो वायदे किए थे अब उन वायदों के अनुसार चलो। तो हम सब ने तन मन धन समय श्वास संकल्प शक्तियां जो कुछ भी बाबा की देन हमको मिली, ये बाबा की देन है ना, उसको बाबा के आगे समर्पित कर दिया, बाबा आपने दिया ये आपका है। और बाबा क्या कहता है, बच्चे मैं तुम्हारा लेके क्या करूंगा, मैं तुमको रिटर्न देता हूं, इसको तुम ठीक तरह से श्रीमत के अनुकूल संभालते चलो, बस मन मत पर मत यूज नहीं करना। तो जो कुछ बाबा ने हम सबको दिया है, तन की शक्ति है, तन कहां पर लग रहा है, किस सेवा में लग रहा है, किस कार्य में लग रहा है, तन केवल दिखावा इस शरीर का नहीं, लेकिन तन के अंदर सभी कर्मेंद्रियां आ जाती हैं, मुख आंख नाक कान, ये हमारी मुख्य ज्ञान इंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं, और उससे पहले भी आत्मा की मुख्य शक्तियां हैं मन बुद्धि संस्कार। तो बाबा जैसे अपनी दरबार लगाते थे, सुनी होगी बाबा की कहानी, बाबा अपनी दरबार इन कर्मेंद्रियों की लगाकर इनसे हालचाल पूछते थे, जैसे राजाएं अपनी दरबार लगाते थे और एक एक अपने मुख्य कर्मचारियों से, मुख्य मंत्रियों से, उस समय मंत्री शब्द नहीं था वजीर शब्द था, तो वजीर से अपनी राय सलाह पूछते थे कि कैसे सारी कारोबार चल रही है। तो बाबा भी जब एकांत में बैठते थे तो आत्मा राजा है और ये कर्म इंद्रियां उसकी प्रजा हैं, कर्मचारी हैं, तो एकांत में बैठ करके मन से पूछते थे, तुम किधर जाता है, क्यों भटकता है, क्या चाहिए, हे वजीर बुद्धि तो मेरा कहना मानती क्यों नहीं है, क्यों भटकाती है, गुरु का ध्यान क्यों नहीं करने देते। तो बाबा ऐसे बहुत प्यार से अपनी दरबार लगा करके उनको अपने कंट्रोल में ले लेते थे। हम सबको भी बाबा कहते हैं, बच्चे ये तन ये मन ये धन जो बाबा ने आपको दिया है अमानत के रूप में संभालने के लिए, इसको किधर किधर यूज कर रहे हो, कहाँ कहाँ जा रहा है, इस पर पहरा दो, अटेंशन रखो, कहीं भी किसी समय भी ये व्यर्थ की तरफ न चला जाए, तन भी व्यर्थ की तरफ न जाए, उसमें जो कर्म इंद्रियां हैं वो भी व्यर्थ की तरफ न समय दें, चेक करना पड़ेगा, स्वराज्य अधिकारी स्थिति में बैठकर ये चेकिंग चाहिए। स्वराज्य अधिकारी माना आत्मा राजा है और स्वयं की राजा है, तो स्वयं पर राज्य करने वाले बच्चे राजा जो हैं वो अपने मन को अपनी बुद्धि को अपने संस्कारों को और अपनी सब कर्म इंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाते और बाबा के आगे अर्पित कर देते, बाबा जैसे आप कहोगे वैसे इसको चलाएंगे। तो बाबा ने हम सबको सवेरे से रात तक के लिए बहुत अच्छी श्रीमत दी है, और श्रीमत को जिसने अपनी बाउंड्री बना ली, श्रीमत की रेखा जिसको शास्त्रों के अंदर लक्ष्मण रेखा कहा गया है, लक्ष्मण रेखा जो खींच दी गई सीता के लिए की आज्ञा थी, तुम इस लक्ष्मण रेखा को नांगना नहीं, बाहर नहीं जाना, अगर इसको तुमने क्रॉस कर दिया तो कोई सुरक्षा नहीं रहेगी। तो बाबा ने भी हम सब के सामने बहुत सुंदर लक्ष्मण रेखा खींच करके दी है, मन को लक्ष्य दिया है कि हे देवता बनने वाली आत्माएं, इतने ऊंचे लक्ष्यधारी आत्माएं कभी भी संकल्प से भी ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना। तो जब हम सब उस मर्यादा की लकीर को सामने रखते हैं तो अपने मन से रूह रिहान करते हैं, मन से बातें करते हैं, क्योंकि अधिक तो पहले नंबर में तो मन ही भटकता है, योग में जब बैठते हैं तो मन कहाँ कहाँ चला जाता है, कोई भी चीज देखता है, कोई भी चीज अच्छी लगती है, जहां से भी कोई रसनाएं प्राप्त हुई हैं जो संस्कार पड़े हुए हैं उसके अनुसार वो मन अपना कार्य करना शुरू कर देता। अगर मन जीत स्थिति बन जाए, मन को हम सब अपने नियंत्रण में ले लें, तो मन जीते जगत जीत, जगत के मालिक बन सकते हैं, संपन्न स्वरूप में सब प्राप्तियां हम कर सकते हैं। लेकिन मन ही उलझता है, उलझाता है, इसलिए मन पर बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। और इसको हमेशा तीन चार बातों का ध्यान रखना है। एक तो कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। अगर हम किसी की ऐसी संगत में बैठते हैं जो पर चिंतन, पर दर्शन, इधर की उधर की नेगेटिव बातों का चिंतन करता है, वर्णन करता है, कभी मुरली में कोई नुक्स निकालता है, कभी बड़ों में कोई ऐसी कमियां ढूंढता है, कभी यज्ञ के ऊपर उंगली उठाता है, कभी बाबा के ऊपर भी शक करता है, तो ऐसे संग से अपनी संभाल करना, नहीं तो मन आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा, उस संग का रंग लगा देगा। इसलिए संग का रंग मन के ऊपर अगर लग गया तो मन बहुत भटकता है, एकाग्र नहीं हो सकता। दूसरा, अगर इसको ठीक अच्छा भोजन, बहुत योग युक्त शुद्ध हाथों से बना हुआ शुद्ध भोजन नहीं मिल रहा है तो भी मन चंचल हो, कहते जैसा अन्न वैसा मन बन जाता है। क्योंकि अगर हम सब क्रोधियों के हाथ का, विकारियों के हाथ का खाते हैं, या कोई ऐसी स्वार्थ वाली आत्माएं, देहमान वाली आत्माओं के हाथ का खाते हैं, तो उसका भी मन के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। शरीर तो उसके आधार से रोगी और निरोगी रहता ही है, लेकिन पहले प्रभावित मन होता है। तो संग और अन्न, और तीसरा जो हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, श्रव्य और दृश्य, ये भी मन को बहुत प्रभावित करते हैं। आज जो हर एक का मन बहुत चंचल है, बहुत उद्वेग में आ जाता है, आवेश में आ जाता है, उसका मूल कारण है अत्यधिक चीजें मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जा रही हैं। ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं जिनको अगर देखने का इंटरेस्ट है तो मैं समझता हूं उसके मन में कभी भी पॉजिटिव और अच्छे संकल्प नहीं चल सकते। अगर आप न्यूज भी देखते हैं, अधिक देखने की आदत है, कोई कारोबार के हिसाब से देखते हैं, अलग बात है, लेकिन अगर कोई न्यूज पर भी बहुत ध्यान देता है तो आपने देखा होगा कि एक न्यूज को कम से कम 40-50 बार दिन भर में रिपीट कर देते हैं, वो मन के अंदर अपना गहरा प्रभाव डाल देते हैं। ऐसी सीरियल्स भी अगर हम देखते रहते हैं, बार बार उन पर इंटरेस्ट रखते हैं, तो भी मन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए ऐसी चीजों के लिए बाबा ने प्रतिबंधित किया है कि बच्चे ऐसी कोई अश्लील चीजें या ऐसे मन को दूषित करने वाली चीजें, जब तुमने मन को अर्पित कर दिया, बाबा ये मन तेरा है, तो बस बाबा को ही देखता रहूं। गीत है ना, बाबा मैं तुझे ही देखता रहूं। तो जब बाबा को ही देखते रहते हैं तो बाबा को देखते रहेंगे, बाबा के गुण, बाबा की शक्तियां, बाबा की हर विशेषता अपने अंदर आती जाएगी। इसलिए अभ्यास करना है कि हम एक बाबा को ही देखें, उसकी ही सुने, एक से सुने, एक को देखें, एक की बातें ही मुख से वर्णन करें। ये भी बहुत बड़ा भाग्य है जो हम सबके मुख से केवल भगवानों आज, जो भगवान ने सुनाया है वही शब्द निकलने चाहिए, क्योंकि हमने मुख भी तो समर्पित कर दिया है। इस मुख के अंदर कोई भी ऐसे अशुद्ध बुरे ख्यालात के साथ बोल भी नहीं निकल सकते। तो इसलिए इतना अटेंशन रखना, ये जब हमने समर्पित कर दिया है, जब हमने सब कुछ बाबा को दे दिया, बाबा की श्रीमत के अनुकूल ही हमारे संकल्प, बोल और कर्म होने चाहिए। कर्म से भी सुख देना है, सुख लेना है। किसी आत्मा को मेरे द्वारा कभी दुख की फीलिंग ना आए, क्योंकि बाबा ने हम सबको ये महामंत्र पक्का कराया है, जैसे कर्म तुम करोगे तुम्हें देख सब करेंगे। हर एक को कर्मों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी वंशावली हमारे हर कर्म पर नजर रखती है, देखती है, इसलिए कर्मों पर भी बहुत ध्यान खिंचवाया बाबा ने। तो जब हमने सब अर्पित किया, बाबा को दे दिया, तो बाबा जैसे चलाए, जैसे मम्मा का एक महामंत्र था, हुकुम ही हुकुम चला रहा है, उसके हुकुम पर चल रहे हैं। जरा भी कभी भी मन मत पर मत ऐड नहीं की मम्मा ने, कभी भी अपना संकल्प नहीं सुनाया। अगर कोई बाबा की मुरली चलती थी और बहने कभी मम्मा से बात करती थी, आज बाबा ने ऐसा कैसे बोला, ये जो बाबा ने बोला इसका क्या अर्थ है, तो मम्मा हमेशा उसको कहती थी क्या सोचते हो तुम। मम्मा बाबा के शब्दों को कभी भी करेक्ट करेगी क्या, जो कुछ बाबा ने बोला। इतना निश्चय बुद्धि थी कि अगर दिन में बाबा कह दे बच्ची रात है, तो बाबा मम्मा कहेगी हाँ जी बाबा, उसके अंदर कोई ना कोई गहरा राज होगा। बाबा का कहना माना, बाबा के शब्दों में कोई गहरा राज भरा हुआ है। इसलिए कभी भी अपनी बुद्धि को समर्पित किया हुआ बुद्धि, कभी अपने मन से नहीं कहा होगा कि ये कैसे होगा, कैसे बाबा ने कह दिया। कोई भी बाबा के महावाक्यों में मम्मा ने कभी प्रश्न नहीं उठाया, दादियों ने कभी प्रश्न नहीं उठाया, लेकिन आजकल की जनरेशन अपने आप को थोड़ा बुद्धिमान समझती है, भले कहती है बाबा जैसे चलाए, जैसे रखे, जो कर रहा है, जो करा रहा है, सब उसी का ही है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं बुद्धि तो है, सोच तो चलेगा, संकल्प तो चलेंगे, क्या हमने समर्पित किया है। अगर सचमुच समर्पित किया है तो इस बुद्धि को अभी आप कहेंगे अगर चलेगी नहीं तो डल हो जाएगी, चलती है, डल नहीं होगी, लेकिन हम सबको अपनी बुद्धि को कभी भी प्रश्नात्मक नहीं बनाना। अगर प्रश्नात्मक बना दिया तो प्रसन्न चित्त स्थिति नहीं रह सकेगी, इसलिए इस बुद्धि को समर्पित कर देना। और बुद्धि में विशेष करके आज एक और आपको एक गहरी बात बताता हूं कि बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जिसको हम बाबा के शब्दों में कहते हैं कि कामनाएं भी काम विकार का एक सूक्ष्म अंश है। अधिक कामनाएं मन के अंदर ही चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, एक प्राप्त होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती, इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। और जहां प्रबल इच्छाएं हैं व्यक्ति की, वहां आप देखेंगे अगर इच्छा पूर्ति होती है, इच्छा पूरी हो जाती है, तो उसको थोड़ा अहम आ जाता है, अहंकार आता है कि देखो मैंने संकल्प किया वो पूरा हो गया, मेरे संकल्प सिद्ध होने लगे हैं, मैं बहुत बड़ा योगी हूं, उसमें भी अहंकार दिखाई देता है। और अगर नहीं पूरा होता है तो दिल से कष्ट होकर के उसको अंदर अंदर गुस्सा आता है, मैं जो करता हूं, मैं इतना बुद्धिमान हूं, मैं अपनी समझ से करता हूं, फिर ये ऐसा कैसे होता है, क्यों नहीं लोग समझते इस बात को। तो गुस्सा आना और अहंकार आना, ये दोनों कामना का स्वरूप है। अगर अंदर कोई कामनाएं हैं, पद की, प्रतिष्ठा की, मान की, शान की, किसी भी प्रकार की कामना लेकर के हम चलते हैं और उसकी पूर्ति नहीं होती, वो कामनाएं हमारी पूर्ण नहीं हुई, तो अंदर अंदर या तो आत्मा निराश हो जाएगी या अंदर अंदर क्रोध में, ईर्ष्या में जलने लगेगी। इसकी महिमा होती, इसका नाम होता है, इसको आगे बढ़ाते, जबकि इससे अच्छे हम हैं, वहां पर उसको अभिमान दिखाई देता, उसकी चलन से, बोल से भी दिखाई देने लगता। इसको समर्पित कर देना, बाबा के बच्चे बने हैं, इतने नम्र चित, इतने निर्माण चित, कहते हैं सब कुछ करके अपने आप को छिपाया, पर माँ बाबा ने क्या नहीं किया, आप समझ सकते हो। श्री नारायण की पदवी को प्राप्त करने के लिए नर ने कैसे कर्म किए होंगे, बिना कर्म के श्री नारायण नहीं मिला। कई बार बाबा कहता है बाबा मेरे ऊपर कोई इतना मेहरबान नहीं हो गया जो सब कुछ दे देगा, मुझे भी कुछ करना पड़ा। तो बाबा ने जो इतनी मेहनत की, अंदर अंदर गुप्त त्याग तपस्या का एक स्वरूप बन करके रहा, सब कुछ पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, यज्ञ की इतनी पालना की, इतना अपने आप को सरेंडर कर दिया, आपको मालूम होगा अपने सुख साधन सुविधाएं सब कुछ बाबा ने अर्पित की। लास्ट तक भी ये पांडव वन में आ पाए, इसलिए इसकी कहानी थोड़ी सी मैं सुना देता हूँ कि जब बाबा का कमरा आप देखते हैं ना, जब हम आए थे 71 में समर्पित हुए तो इस कमरे का बहुत छोटा रूप था, आधा था, और इसमें भी बाबा का लेटरिन बाथरूम जो था वो इधर जहां पर ये बाथरूम बने, यहां धोबी घाट था, वहां पर एक टीन सीट ऐसे लगा हुआ था चारों तरफ से खुला, और लोटा लेके बाबा वहां जाते थे। वहीं पर एक स्नान गृह बनाया था और एक लेटरिन बाथरूम था। बहुत सिंपल जीवन, एकदम सादे जीवन जी। और जब ये हवा महल, ये हवाई महल जिसमें बड़े भाई रहते हैं, बाजू में मकान जो है ये तैयार हुआ बन करके बाबा के सामने ही, बाबा ने ही दो भवन बनवाए, एक का नाम दिया हवाई महल और एक का नाम दिया एरोप्लेन। जो एरोप्लेन दो मरगोल है ना ऊपर, उसको नाम दिया एरोप्लेन। तो बाबा ने वहां झंडा लहराते थे शिव बाबा का, ऊंचाई पर है इसलिए एरोप्लेन नाम दिया, और ये हवाई महल क्योंकि हवा का क्रॉसिंग बहुत अच्छी थी। तो जब ये बिल्डिंग बन के तैयार हुई तो सब बड़े भाई बहनों ने कहा बाबा आप यहां पर रहो, बहुत पुराना मकान है, पानी टपकता है। बाबा कहता था बच्चे तन ही पुराना है, इस पुराने तन को कुछ नहीं चाहिए, जैसा हूं वैसा ठीक है, बच्चों के लिए बाप ने बनवाया। इतनी अंदर से त्याग वृत्ति, इतना समर्पित भाव जो कभी भी बाबा ने नहीं दिखाया कि मैंने इतना किया है मुझे क्यों नहीं रिटर्न मिलता। सब कुछ था, ऐसा नहीं कोई चीज की कमी थी, कोई कमी हो उसके ऊपर त्याग किया जाए अलग बात है ही नहीं, लेकिन सब कुछ बाबा के आगे होते हुए भी बाबा ने कभी भी उसे स्वीकार नहीं किया, कभी भी नहीं आया कि मेरा है ये सब बच्चों। महिमा स्वीकार नहीं की, अगर कोई बाबा की महिमा करता था तो बाबा कहते थे बच्चे बाप की महिमा है, इस दादा की नहीं, दादा तो पुराना तन है तो पतित तन है, और कोई महिमा करे तो बच्चे सब कुछ करते हैं बाप थोड़ी कुछ करता है। हमने अपनी दादी को देखा, दादी प्रकाशमणि हमेशा इतनी नम्रचित, इतनी निर्माणचित। तो दादियों को अगर आप देखेंगे अभी भी, कभी भी उनको ये नहीं आता मैं बड़ी हूं मैं दादी हूं। भले दादी शब्द कभी कभी दादी इस रूप से यूज करते जैसे कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है कि दादी ऐसे कहती है, दादी ऐसे समझती है, मैं ऐसे कहती हूं, मैंपन उन्होंने समर्पित कर दिया। तो सबसे बड़ा समर्पित था मैं और मेरेपन का, कभी भी अधिकार नहीं रखा। यहां तक भी उस समय कोई वीआईपी रूम नहीं थे, कोई अच्छे ऐसे रूम नहीं थे, कोई वीआईपी आ जाए कहां रहे कहां रखें। तो थोड़ा सा अच्छा रूम जो दादी का अपना था, जब कोई ऐसे वीआईपी आते थे दादी कहती थी मैं जनरल में सो जाऊंगी, ये कमरा उनको दे दो। इतना त्याग वृत्ति, कभी भी बाबा ने दादियों ने अपने लिए मेरा है अधिकार नहीं रखा, अपने आप को फुल सरेंडर किया होता अपनी चारपाई पर भी अपना अधिकार नहीं। मैंने तो दादी को देखा कभी नहीं कहा होगा ये मेरा कमरा मेरी चारपाई। ठीक है कोई सेवा है, साधन आए हैं, बाबा ने दिए हैं, यूज कर रहे हैं, लेकिन जहां सेवा है। एक बार एक परिवार आ गया, अनन्य था, मेरे सामने ही आया, और बहुत अच्छे घराने का, जो बाबा को बहुत दादियों को बहुत मदद की बेगरी पार्ट के समय। तो जब वो पार्ट परिवार आया बाबा के घर में तो दादी ने कहा कहाँ रहेंगे, तो बहुत बड़े घर के लोग हैं, तो दादी ने अपना कमरा खाली कर दिया और आकर के जनरल में जहां सब बहनें सोती थी वहीं सोई। इतना त्याग वृत्ति कि नहीं मेरा कहाँ है, तो बाबा ने दिया है ना, इस सेवा के लिए दिया है। जो जब यहाँ पर पहली बार प्रेसिडेंट आया तो उसके लिए सब साधन देखते हैं कैसी सुविधाएं हैं यहाँ पर, तो कोई अच्छा बाथरूम नहीं है। अगर प्रेसिडेंट को रिफ्रेश होना हो, फ्रेश होना हो, कहाँ जाएगा, इतनी बड़ी अथॉरिटी है। तो उसके लिए यहाँ पर एक दीदी का कमरा था, उसके साथ एक अच्छा बाथरूम बना रॉयल बाथरूम की, यहाँ आके दीदी के कमरे में वो रहे, रेस्ट करे और ये बाथरूम यूज करे। माना दीदी दादी ने अपने आप को फुल सरेंडर, एकदम समर्पित, कुछ भी मेरा नहीं, सब बाबा का है, सब बाबा की सेवा के लिए है। इतना समर्पित किया मैं और मेरेपन को, जो कभी भी उनके चलन से, उनके चेहरे से, उनके बोल से मैंपन जरा भी कहीं अंश मात्र भी दिखाई नहीं दिया। नहीं तो उस मैं में थोड़ा अहंकार होता है, मैंने सरेंडर किया है, मैं बहुत बड़ा हूं, लेकिन वो मैं को एकदम समाप्त करके एकदम निर्माण चित बन गई। कभी भी अपनी महिमा स्वीकार नहीं की। दादी के सामने कितने लोग आकर के कहते थे, फलानी बहन ने बहुत अच्छा कोर्स कराया, बहुत अच्छा लेक्चर दिया दादी। दादी को तो सुनाते हैं ना, जब कोई पार्टियां आती हैं तो जाएंगी कहेंगी फलाने ने बड़ा अच्छा क्लास, दादी को खुशी होती, बहुत अच्छा उस बहन ने तुमको बहुत अच्छा सुनाया। ऐसे नहीं, उसकी महिमा क्यों हो रही है, वो तो कल की आई लड़की है, कभी उनके मुख से नहीं निकला। उसकी महिमा माना बाबा की महिमा, उसकी महिमा माना मेरे यज्ञ की महिमा। तो इतना नम्रचित निर्माण चित बन गई, इतना निरहंकारी बन गई, जो ईर्ष्या द्वेष नफरत सब कुछ समर्पित कर दिया, कुछ नहीं अपना रखा, यहां तक भी अपने आराम के साधन भी सेवा में लगा दिए, उनको भी समर्पित कर दिया, सुख शांति के साधन भी जो मिले हुए थे उनको भी समर्पित किया, तब संपन्नता को प्राप्त हुए। हम सभी भी जिन बातों पर हम अपना अधिकार समझते हैं, अपना अधिकार किस पर है, लौकिक परिवार है, कोई पद है, कोई पोस्ट है, कोई पोजीशन है, कोई धन है, कोई संपत्ति है, तो उसको समझते हैं मेरा है, कैसे यूज करना अपने ढंग से यूज करेंगे। लेकिन आप विचार करो, अगर हमने बाबा को बुद्धि योग से कह दिया ये बाबा आपका है, जैसे आप सब अगर कहीं विदेश के बच्चे भाई बहनों से मिले, अनुभव सुने, मैं एक बार लंदन गया तो मेरे को रोज बाहर बहने भेजती थी, क्लास करा और घूम के आओ, दोपहर को घूम के शाम को क्लास करा के वापस आ जाओ। तो रोज नई गाड़ी आती थी, नए भाई बहने आते थे मुझे लेने के लिए, बाबा की गाड़ी में बैठो, कहाँ जाना है, बाबा के घर में जाना, बाबा की गाड़ी, बाबा का घर, शायद यज्ञ का सेंटर का होगा, सेंटर का नहीं होता था। हरेक के मन में एकदम बाबा को दादी ने, जानकी दादी ने बिठा दिया, हरेक यही कहे बाबा की गाड़ी, बाबा का घर, बाबा की दुकान, बाबा के घर पर चलो, बाबा की दुकान पर चलो, एकदम एकदम बाबा मैं बना दिया है। आप लंदन अगर जाए देखेंगे सबके मुख पर एक ही, बाबा की गाड़ी है, बाबा का घर है, बाबा की दुकान है, बाबा का परिवार है, अपना अपन उन्होंने समाप्त कर दिया, समर्पित है। और समर्पित है तो आप समझते हैं बाबा को आगे हमने अर्पित किया तो बाबा क्या करेगा, कई गुना करके रिटर्न कर देगा, संपन्न बना देगा। तो हम सब भी बुद्धि योग से जो कुछ बाबा ने दिया है, बाबा को एक बार ऑफर करो, बाबा ये सब तेरा है, और जहां तेरा आ गया वहां पर, जहां भी तेरा शब्द आया वहां पर तनाव खत्म हो गया, और जहां मेरा शब्द है वहां बहुत प्रकार का टेंशन है, उसको संभालना पड़ेगा, कोई कुछ न हो जाए, कहीं नुकसान न हो जाए, कहीं ये न हो जाए, बहुत सारे चिंतन चलते रहेंगे। और अगर निश्चिंत स्थिति नहीं है, माना मैंने कुछ न कुछ अपना समझा है, अपना अधिकार समझ रहे हैं, इसके कारण हम चिंतित हैं, पता नहीं कुछ हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अगर सब कुछ बाबा को अर्पित किया है, सब कुछ बाबा का है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं अपने लौकिक परिवार की। जब बाबा, हम तो बहुत छोटे थे, 4 साल के थे, पिताजी ज्ञान में आ गए, और उनको इतना निश्चय हो गया, इतना निश्चय हो गया कि भगवान अब धरती पर आया है, और मैं इकलौता बेटा, 3 भाइयों के बीच में इकलौता बेटा। जब मैं मधुबन में आया और मेरा संकल्प उठा और दादी ने कहा तुम अपने पिताजी की छुट्टी लेकर के आना, तो मैंने ऐसे अचानक उनको बोला कि दादी ने ऐसे बोला है, आप छुट्टी देंगे, क्योंकि दादी को था कि इकलौता बेटा इसको कैसे छुट्टी मिलेगी, 3 घर हैं, 3 दुकानें हैं, 3 पिता हैं, 3 की प्रॉपर्टी का मालिक अकेला है, इसको छुट्टी नहीं मिलेगी। जब मैंने अपना संकल्प ऐसे दिया जाकर के, तो पिताजी खुश हुए, बात मत पूछो, कहते हैं इतना बड़ा भाग्य, भगवान धरती पर आया और ये बच्चे मेरे समर्पित हो जाएं, सेवा में लग जाएं, तो मेरे को भी चांस मिल जाएगा, मैं भी समर्पित हो जाऊं। उन्होंने फट से लेटर लिख दिया, सोचा भी नहीं, और ऐसा लेटर लिखा, दादी को ऐसे देखकर दादी कहती मेरे को देखते ही तुमको छुट्टी मिल गई, दिखाओ मेरे को लेटर। मैंने दिखाया तो कहती अच्छा इतना निश्चय है उसको, कोई की परवाह नहीं की, समर्पित माना समर्पित, इतना बुद्धि से समर्पित थे, ये कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ बाबा को दे दिया, ये घर बाबा का, ये दुकान बाबा की, ये बच्चे बाबा के, सब कुछ बाबा संभालेगा। लोग कहते थे देखेंगे, तुम किसी की शादी में नहीं आते हो ना, तुम्हारे बच्चों की शादी होगी तो देखेंगे, तुम किसी के उसमें नहीं जाते हो ना फंक्शन में, तुम भी कभी करोगे तो देखेंगे कौन आता है, ऐसे धमकी देते हैं ना लोग। पिताजी कहते थे हमने तो जिसको दे दिया वो संभालेगा ना, मुझे क्या करना। जब मैंने बाबा को दे दिया तो बाबा जाने, इसलिए जब बाबा को समर्पित कर दिया इतना निश्चिंत थे, इतना निश्चिंत थे कि अचानक माताजी ने शरीर छोड़ दिया। तीन के बीच में एक ही माता थी संभालने वाली घर को। जब उसने शरीर छोड़ा तो गांव में इतनी हलचल हो गई कि अभी तो राजू को बुलाओ, उसकी शादी करो और उसको घर में रखो, कौन अभी घर में खाना बनाएगा, इतना बड़ा पेपर समझो। दादी मुस्कुरा के मेरे को ऐसे कहती, अभी देखना अभी पेपर आया है, पास होके आ जाना। मैं घर में गया, हमने कहा क्या है, हमने कहा ये तो बहुत बड़ा भाग्य है, चलो अभी बंधन एक था, अभी तो आप सब हमारे जैसे कुमार बन गए। देखते ही ऐसा लगा कि सचमुच बाबा ने सब बंधन काट दिए। उनको भी कहा कि अच्छा जो कुछ है, जो उसने संभाला है माता जी ने, इसको सफल कर लो, क्योंकि माताएं बहुत अंदर अंदर गुप्त रीति से भले ज्ञान में चलती हैं लेकिन अंदर रहता, बच्चे की शादी होगी, बहू आएगी, ये होगा, बहुत अंदर अंदर रहता है। माता जी भी ज्ञान में चलती थी लेकिन अंदर मोह था। समर्पित होने के बाद भी थोड़ी रग थी तो उन्होंने अंदर अंदर कि आएगा तो शादी तो करेंगे ना, एक ही तो बेटा है, तो बहुत सारे गहने, बहुत सारे बर्तन, बहुत सारे रंग बिरंगी साड़ियां सब छिपा छिपा के भर के रखी थी। और जब अचानक छूटा शरीर तो मैं गया तो हमने कहा पहले ये बताओ क्या क्या रखा है अंदर, दिखाओ। तो सब देखा, हमने कहा ये सब सफल कर लो, ये सब निकालो, यही सबसे बड़ा माया है, क्योंकि इसके पीछे वो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी अगर ये संभाल के रखोगे तो। सब समर्पित करा दिया। कहते अब क्या करना, हमने कहा बिल्कुल हल्के हो जाओ, जो दुकान है वो भी बेच दो, खेती भले नहीं बेचो, खेती तो हर साल देती है, घर में बाबा का केंद्र चल रहा है, घर में बाबा का केंद्र चलाओ, लेकिन तुम लोग बिल्कुल लाइट हो जाओ, कुछ नहीं अपना है, सब बाबा को दे दो। जब समर्पित हुए, सब कुछ दे दिया, सफल कर लिया, दो साल के बाद ही नंबर आ गया, चाचा जी इधर आ गए, पिताजी भी समर्पित हो गए, सब समर्पित हो गए। बाबा का घर अभी भी गांव में चल रहा है, केंद्र बना हुआ, कुलदीपक बाबा बैठा है, वो संभाल रहा है, खेती से आता है हर साल। जहां हम समर्पित हुए वहां हर प्रकार की संभाल बाबा अपने आप करता है। ऐसे नहीं समर्पित हो जाएंगे, पता नहीं कल क्या होगा, हमने तो बाबा को दे दिया, फिर कोई जरूरत पड़ेगी तो कहां से लाएंगे, कई प्रकार के जो प्रश्न चलते हैं ना, अगर इन प्रश्नों का समाधान करना है तो बुद्धि को सरेंडर करो। जैसे कोई राजा किसी राजा के ऊपर चढ़ाई करके उसको जीत लेता है, उसको अंडर कर लेता है, तो कहते हैं तो सरेंडर हो जा, और सरेंडर होने के बाद राजा के हुक्म, जिसने जीता उसके हुक्म के बिना वो कुछ नहीं कर सकता, चाहे जितना बड़ा उसके पास राजी भाग हो, चाहे जितने उसकी सेना हो, सब सरेंडर हो जाती है। और सरेंडर होने के बाद राजा के हुक्म के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता है, खाना भी नहीं खा सकता है। अगर हम बाबा को सरेंडर हो गए तो हम और कुछ नहीं कर सकते, जो बाबा कह रहा वही करना है। और हम सब जानते हैं कि बाबा हम क्या चाहता है। तो अगर हमने अपना ये तन, ये मन, ये धन, ये समय सब कुछ समर्पित किया है तो हम अपने आप से पूछते रहे, कहीं पर भी एक पैसा भी, ये बाबा की एक एक पैसे की जो अमानत है, बाबा की अमानत है, वो कहीं भी इधर उधर तो नहीं लगा रहे, व्यर्थ तो नहीं खर्च कर रहे हैं, शौक मौज में तो नहीं जा रही, दिखावे में तो नहीं जा रही। कई लोग दिखावा बहुत करते हैं, इसने इतना अपने परिवार में खर्च किया, इतना इसने गाड़ी लगी लिया, इतना अच्छा मकान बनाया, मेरे पास भी है तो मैं क्यों नहीं बनाऊं, मैं क्यों पीछे रहूं। लेकिन अगर मैंने समर्पित किया है तो बाबा ये नहीं कहता है तुमको एकदम ऐसे बेघर बन जाओ, बुद्धि से बेघर बनो लेकिन रहो आराम से अगर है तो। लेकिन शौक मौज में एक दूसरे से भेंट करके अपने पैसे को बर्बाद मत करो, वो बाबा की सेवा में सफल होगा। एक कौड़ी अगर बाबा के काम में लग गई तो मुहर समान बन जाएगी, इतनी वैल्यू है इस संगम पर धन की, संकल्प की, श्वास की। अगर इसको इतनी वैल्यूबल रीति से हम प्रयोग करें तो हमारी क्या जीवन बन जाएगी, संपन्न नहीं बन जाएंगे, संपन्न और संपूर्ण स्वतः बन जाएंगे। इसलिए संपूर्णता को सामने रखो, संपन्नता को सामने रखो, और उसमें अगर कोई विघ्न है, कोई रुकावट है तो चेक करो, किस पर मैंने अपना अधिकार जमाया हुआ है। अगर अधिकार है तो बुद्धि चलती है, चिंतन चलता है, संकल्प विकल्प चलते हैं, समर्पित कर दिया तो बस बाबा बैठा है, बाबा संभालेगा, वो संभालता है। जानते हो आप, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ समर्पित किया और इतने प्यार से बाबा का यज्ञ 14 साल चला, लेकिन उसके बाद आबू में आए और आबू में बाबा ने वो परीक्षाएं ली, जो कुछ था वो सब चला गया, कुछ नहीं बचा, और 400 लोग खाने वाले, बाबा बेफिक्र बादशाह, एकदम निश्चिंत स्थिति। कभी भी बाबा को तनाव नहीं हुआ कि 400 बच्चे कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या होगा, अभी कुछ नहीं है भंडारे के अंदर। अचानक बोल देता था, बच्ची आज ये चीज बनेगी, कहां से बनेगी। कहते होली का दिन था, बाबा की शाम को मुरली चली, बच्चे कल होली है, जलेबी का भोग लगेगा। अब वो बाबा बोल गया, अब भंडारी वाले को सुना, उसने सुना, भंडारी ने बहुत दौड़ के गई बाबा के पास, बाबा आपने कहा जलेबी बनेगी, आपको पता है भंडारे के अंदर तेल ही नहीं है, मैदा भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप कहते हो जलेबी का भोग लगेगा। बच्ची मैं थोड़ी कहता हूं, ऊपर वाला कह के गया। इतना निश्चिंत हो सकती है आत्मा कोई, बताओ। ब्रह्मा बाबा इतना निश्चिंत था क्योंकि निश्चय था कि उसका ये यज्ञ है, वो इसको चलाएगा, जो बाबा कह रहा वो करेगा। एक काम हम कर सकते, बाबा ने कहा क्या करो, आज 2 बजे योग करो। योग ही सब प्रकार की प्रॉब्लम का हल है, सब समस्याओं का हल है। बाबा ने बोला है तुम बच्चे 2 बजे योग करो, आज होली के दिन योग करेंगे। रात को 2 बजे सब उठे, लाल लाइट हो गई। जब लाल लाइट जली तो सामने एक परिवार रहता था जो बहुत एंटी था, माताजी बहुत भावना वाली थी, आती थी बीच बीच में छिप छिप करके। भाई जो था वो बहुत बाबा को देखते गुस्सा होता था, सिंधी था, गालियां भी देता था कि बाबा को क्या हो गया, इतनी बहनों को लेके घूमता रहता है, बहुत उल्टा सीधा बोलता था। 2 बजे जब लाइट जली ना, वहां पर ब्रज कोठी में, यहां भरतपुर कोठी में बाबा रहता था, तो उस समय जब लाइट जली तो उसकी नींद पहले फिट गई, और नींद फिटी तो अपने युगल को उठाता है, कहता है आज पता नहीं बाबा को क्या हो गया है, देखो 2 बजे बच्चियों को उठा दिया, छोटी छोटी बच्चियां योग करो, ये क्या कर रहा है, मुझे टच कर रहा है कि तुम्हारे पास जो रखा है सब भेजो अभी। कहती है उसी समय, कहता है दे आओ जाकर के जो भंडारे में रखा है, खोलो अलमारी जितना रखा है अभी सब दे आओ। कहती सुबह दे आएंगे ना, अभी क्या जल्दी है। बोला मेरे को नींद नहीं आएगी और सवेरे तक मेरी बुद्धि पलट जाएगी, तुम अभी दे आ जाकर। कहते हैं 2 बजे उसको उठाया, उठा करके जो भी था भंडारे के अंदर उसके पास रखा हुआ सब भेज दिया। आया तो देखा दादियों ने, बाबा समझ गई कि बाबा की ये सब चतुराई है। सवेरे देखा तो उसे सब कुछ आया और भोग लग गया जलेबी का। करण करावनहार बाबा है, खिलाने पिलाने वाला वो है। हम जवाबदारी ले लेंगे तो बाबा निश्चिंत हो जाएगा। अगर आप अपनी जवाबदारी समझोगे कि मैं परिवार को पालने वाला हूं, मेरी जवाबदारी है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, तो बाबा तो किनारा करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन अगर निश्चय है कि वो सब खिलाने वाला, पालना देने वाला, चलाने वाला, संगम पर वो सब कुछ करा रहा है, इसका अनुभव करके देखो। दादियां वो अनुभव कर रही हैं, इसलिए हम देखते हैं वो इतने बड़े यज्ञ को चलाते हुए देखते हुए बहुत निश्चिंत रहती हैं। कभी भी चिंता नहीं करती कल क्या होगा, कैसे चलेगा, इतने खर्चे बढ़ते जाते हैं, इतना सब बढ़ता जा रहा है। कभी कभी हिसाब देते हैं ना तो ऐसे लगता है इतना खर्चा है, आवत इतनी कम हो रही है और खर्चे इतने अधिक बढ़ रहे हैं। हम लोग दादी के साथ बैठते हैं ना, लेकिन इतना पहले देखेंगी, पहले कहेंगी हाँ इतना खर्चा नहीं होना चाहिए, फिर अपने आप को निश्चिंत कर ले बाबा बैठा है। इतना निश्चय है बाबा बैठा है, बाबा का यज्ञ है, बाबा के बच्चे हैं, सब कुछ हो रहा है, अपने आप भंडारा भंडारी चल रहा है, भरपूर हो रहा है। इतना निश्चिंत स्थिति कैसे बनी, इतना निश्चय, इतना अटल विश्वास, सब कुछ समर्पित किया उसके ही है, हमको भूखा थोड़ी रखेगा। जो सबका दाता है, जो किसी को भूखा नहीं छोड़ता, वो हमको कैसे भूखा रखे, उसके तो हम बच्चे हैं। हमारे से उसका इतना स्नेह है और स्नेह के आधार से हम उसके ऊपर कुर्बान गए हैं, तो हमारी संभाल नहीं करेगा क्या? इसलिए निश्चय बुद्धि, निश्चिंत स्थिति में रहकर अपने आप को संपूर्ण समर्पण करके जो कुछ है, बुद्धि नहीं चलाना अधिक, जो साधन है, जो सुविधाएं हैं, सब सेवा के लिए हैं, बाबा के लिए हैं, बस यूज करो। यूज करने के लिए बाबा मना नहीं करता, लेकिन मेरेपन का अधिकार रख करके नहीं करो, नहीं तो मेरे का बहुत बड़ा फेरा है और वो जहां मेरेपन का अधिकार है वहां बहुत दुख है। एक कहते हैं, छोटी सी कहानी शायद आप लोगों को सुनाई हो, बहनों को, बहनें सुनाती हैं। कहते एक सेठ जी ने बहुत हेरा फेरी करके, एक रहते थे छोटी कुटिया के अंदर, झोपड़ी के अंदर, फिर उनका मोह था कि मेरे बच्चे पोतरे धोतरे सब आएंगे तो कहाँ रहेंगे। तो उन्होंने बहुत हेरा फेरी करके पैसा इकट्ठा किया और एक बहुत बड़ी 4-5 मंजिल की बिल्डिंग बना दी और रोज देख के खुश होते रहते थे कि देखो हमारी मेहनत की, खून पसीने की कमाई, यहाँ पर ये होगा, यहाँ बच्चे आएंगे, यहाँ ये रहेंगे, यहाँ ये रहेंगे, एक एक कमरे के नाम पर, एक बच्चे के नाम पर सब कमरे मकान बुक करने लगे, तैयार कर दिया। लेकिन जब वो बन के बिल्डिंग खड़ी हुई, तैयार हो गई, तो अचानक उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई। कहते वो जब देखा, उनको लोगों ने बताया, बाबूजी आपकी बिल्डिंग में आग लग गई, आग लग गई। उनको बस सुनते ही बस फिट पड़ गई, एकदम बेहोश होने लगे, चिल्लाने लगे, सारी खून पसीने की कमाई मेरी, मेहनत खत्म हो गई। उनका बच्चा बड़ा होशियार था, वो दौड़ करके, बाबूजी क्या हुआ? अरे बेटा, सारी जिंदगी जो हमने इतना पाप पुण्य करके इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की, वो मेरे सामने जल रही है, अब मुझे जीने का कोई मतलब, मैं नहीं जी सकता, मैं नहीं रह सकता, तड़प रहे थे। बच्चा बड़ा समझदार था, कहता बाबूजी मैं आपको बताना भूल गया, ये तो मैंने बेच दी थी, ये तो चेक मेरे हाथ में है, एक कागज का टुकड़ा दिखाया उसको, ये तो अपनी है ही नहीं, ये तो मैंने बेच दी 5-6 दिन पहले, इसकी लिखा पढ़ी हो गई। अच्छा वो अपनी नहीं है? एक मिनट में उसका बस जो दर्द था वो सब खत्म हो गया। जल रही है बिल्डिंग, नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या भावना रही? ये मेरी नहीं है। एक समय, एक मिनट पहले मेरी थी तो दुख दर्द था, तकलीफ थी, हाय हाय कर रहा था, और एक मिनट में बुद्धि परिवर्तन हो गई, मेरी नहीं है, ठीक हो गया। विचार करो, किसी चीज को अगर मैंने मेरा समझा है तो कितने दुख हैं, कितनी अशांति है, कितनी परेशानियां हैं, कुछ भी होगा, हाय ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कहीं अचानक शरीर छोड़ के चले जाते, मेरा ये चला गया, मेरा सब कुछ चला गया, सारी जिंदगी उसके पीछे आंसू बहाते रहते, रोते रहते। अरे जब बाबा ने दिया, बाबा कहता अच्छा बाबा ने दिया, बाबा ने लिया, तो तुम क्यों रो रहा है? जिसकी चीज उसके पास चली गई, लेकिन उसमें जो मेरेपन का मोह आ गया है, अटैचमेंट आ गई है, उसको बाबा छुड़ाने के लिए कहता बच्चे समर्पित करो, दे दो बाबा को, बाबा संभालेगा, जिसकी जवाबदारी बाबा ने ले ली है उसको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए इतना अंदर से सरेंडर हो करके रहो, प्रवृत्ति के अंदर, घर गृहस्थ के अंदर सब कुछ करो, सबकी छुट्टी बाबा ने दी है, लेकिन बाबा कहता बच्चे अधिकार रख करके, अधिकार में ही दुख है, अधिकार को सरेंडर किया, सब कुछ सरेंडर हो गया, मेरा कुछ नहीं है। इतना निश्चिंत हो जाओ, जैसे चलाए, जैसे रखे, जिस हाल में रखे, आप देखेंगे बहुत अच्छी सब शक्तियां अपने आप आएंगी, काम करेंगी, बहुत अच्छी स्थिति, निश्चिंत स्थिति, निर्भय स्थिति, एकदम निर्विकल्प स्थिति बन जाएगी, कोई विकल्प चलेंगे नहीं। किसी में मोह ममता नहीं है तो दुख और अशांति आ ही नहीं सकती, इसलिए ऐसी स्थिति ही संपन्नता की निशानी है। सब प्राप्तियां, सब बाबा जो चाहता है स्थितियां बन जाए, वो स्थिति अपने आप बन जाएगी, लेकिन सरेंडर होना पड़ेगा। सर अंडर कर दो, सरेंडर माना सर अंडर कर दो, बाबा जैसे चलाओ, जैसे रखो, जो खिलाओ, जो पहनाओ, मैं तो आपका हूं। हम लोगों ने तो ऐसा करके देखा है, इतनी निश्चिंत स्थिति रहती है, कभी कोई कमी पड़ी नहीं है। जब सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बाबा है, हमारी कौन सी कामना ऐसी रहेगी जो पूरी न करे? लेकिन हमारी वो कामनाएं न हो जाएं जो दुनिया वालों की है, इसलिए बाबा कहता पहले देह को समर्पित कर, फिर देह के संबंधों को समर्पित कर, फिर संस्कारों को समर्पित कर, अपने स्वभाव को समर्पित कर, अपने इंद्रियों को भी समर्पित कर दे। जब ये सब समर्पित होंगी तो ये इंद्रियां बहुत सरल, शीतल, पवित्र, स्वच्छ बन जाएंगी और बाबा का अधिकार होगा इनके ऊपर, जैसे चलाए जो करे बाबा टच करेगा, बच्चे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। आती है टचिंग बाबा की कि नहीं आती है? आती है ना, लेकिन किसको आएगी? जिसकी बुद्धि बहुत स्वच्छ साफ होगी। अगर बुद्धि में जरा भी कहीं मिक्स है ना, मैंपन, मेरापन, मेरी बुद्धि, मेरी इन्वेंशन, मेरी समझ, मेरा मेरा मेरा, वहां बाबा की टचिंग नहीं आती। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के बाबा के आगे बैठ जाओ, जाके आपको बाबा टच करेगा, बच्ची ये करो, ऐसे चलो, ऐसे रहो। इतना अच्छा संबंध हो बाबा के साथ कि बाबा के आगे बैठो, जाओ बाबा के कमरे में, फोटो समझ के नहीं बैठना, फोटो के आगे नहीं है, ये फोटो नहीं है। आपकी एक बात सुनाता हूं। एक जगह अकेली एक बहन रहती थी विदेश में, और उस अकेली बहन ने एक सेंटर बनाया था छोटा सा, उसमें बाबा का एक फोटो लगा था, बड़ा अच्छा ब्रह्मा बाबा का फोटो। नहीं तो विदेश में ब्रह्मा बाबा का फोटो कम रखते हैं, नहीं रखते, शिव बाबा का रखते हैं, उसने रखा था। तो वहां एक साइंटिस्ट आया, तो वो साइंटिस्ट देख करके पूछता ये कौन है? तो ये बोली जिसमें हम सभी ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं ना, उनका ये फाउंडर है, फाउंडर है, उसका फोटो है, फाउंडर का ये फोटो है, बहन ने कहा। और वो साइंटिस्ट उस फोटो को देख करके आकर्षित हो गया, कहता ये फोटो है, फोटो नहीं लगता है मेरे को। वो बहन कह रही है फोटो है, और साइंटिस्ट कहता है फोटो नहीं है, इसके अंदर कुछ है, चमत्कार है। कहते उसके पास एक मशीन थी चेक करने की, जैसे किसी के आगे लगाए ना पेंडुलम, जैसे हिलने लगता है, चैतन्य शक्ति जहां होगी वो पेंडुलम हिलेगा। तो उसको विश्वास नहीं हो रहा, वो बहन कहे नहीं फोटो है, बाबा का हमारे फोटो है, वहां का इंडिया का हमारा जो गुरु है, इस विद्यालय का संस्थापक, उसका फोटो है। वो कहे नहीं, ये चैतन्य है, इसके अंदर कुछ शक्ति है। और सचमुच वो पेंडुलम जब ऐसे लगाया जाके वैसे ऐसे हिलने लगा। बोला बहन जी आपको पता नहीं चलता, इसके अंदर कोई शक्ति है। बाबा चैतन्य स्वरूप में अभी भी कहीं पर भी कोई को अनुभव अपना करा सकता है, किसी रूप से भी करा सकता है। तो बाबा के कमरे में बैठ करके ऐसे नहीं समझो कि तो फोटो रखा है ना, चैतन्य स्वरूप में बाबा हमारे सामने है, उसकी दृष्टि लो, उसकी सकास लो, उससे रू रियान करो, आपको फोटो के आगे भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होने लगेंगे, चैतन्य अनुभव होने लगेगा। और फिर बाबा के साथ ऐसी कनेक्शन जुटे, ऐसी लाइन क्लियर हो जो आपको अपने संकल्पों को, थॉट्स पावर को आप रीड कर सको, राइट है या रांग है, बाबा उसको टच कराएगा, ये राइट है ये रांग है। और कोई दूसरी टचिंग बाबा नहीं देता, हमारे संकल्प जो राइट हैं उनको कहेगा ये राइट है, हमारे संकल्प जो रांग है वो कैसा ठीक नहीं है। हमने देखा मेरी दादी जी को ऐसी अच्छी टचिंग आती थी, यहां एक बार जब दादी जाती थी ना यहां से बाहर, बड़ी दादी की बात कर रहा हूं, कुमारका दादी की, तो बाबा के कमरे में जाने के बाद जब बाहर निकलती थी तो अपना अनुभव सुनाती थी कि आज बाबा ने मुझे ये कहा, आज बाबा ने मुझे ये कहा, ट्रांस में नहीं जाती थी, लेकिन बाबा के कमरे में जा करके बैठती थी और दृष्टि लेकर के रूह रिहान करती थी और बाहर आके सुनाती थी, आज बाबा ने मुझे ये कहा, आज बाबा ने मुझे ये कहा। हम लोगों को लगता था दादी शायद अपने संकल्प सुनाती होंगी, बाबा कैसे बोलेगा, बाबा तो कमरे में थोड़ी बैठा है। तो एक दिन क्या हुआ कि दादी का सामान सारा गाड़ी में पैक हो गया, जाने की तैयारी हुई, और दादी जब सबसे छुट्टी लेकर के बाबा के कमरे में गई तो बाहर आई और बाहर आके कहती मेरा सामान उतार दो। कहती क्या हो गया, ट्रेन की टिकट है, सब कुछ है, तैयारी है, बाबा ने आज लाल झंडी दिखा दी मुझे, कहता नहीं जाना बच्ची। इतना विश्वास बाबा के, जब हम अगर समझें कहेंगे बाबा के कमरे में गए तो हमारे मन की टचिंग होगी ना, लेकिन बाबा के पास जाके दृष्टि लिया और बाबा के से क्या अनुभव दादी को हुआ कि हरी झंडी नहीं है, तुम्हारे को जाने की जरूरत नहीं है। बाबा दादी ने तुरंत बाहर आके अपना सामान उतरवाया और प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। जब यहां से बाद में दो तीन दिन के बाद समाचार मिला कि वहां पर जहां जाना था दादी को, जिस मीटिंग के लिए जा रही थी, वहां बहुत बड़ा हंगामा आपस में हो गया, कोई कारण बन गया, और दादी का न जाना ही अच्छा था। दादी जाती तो ठीक नहीं होता। तो कई ऐसी टचिंग्स बाबा देता है समय पर कि बच्ची यहां जाओ यहां न जाओ, ये करो ये न करो, लेकिन इतना गहरा संबंध, इतना अच्छा स्नेह जो बाबा टच करे, सच्चाई को बाबा देखता है, सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। इसलिए आप सब बाबा के साथ इतने संबंध को समीप बनाओ, अपनी बुद्धि को सरेंडर करो, मन को समर्पित करो, संस्कारों को समर्पित करो। बाबा मैं आपका बन गया, अभी आप इसको जैसे चलाना है चलाओ। हम तो रोज यही कहते हैं, बाबा जितना यूज करना कर लो, कल किसने देखा, जो कर सकता हूं अभी कर सकता हूं, कल तो कोई भरोसा नहीं है। वैसे भी कहते हैं कल काल का नाम है, कल तो काल का नाम है ना। इसलिए अगर बाबा ने आज आपके पास तन की शक्ति दी है तो तन सेवा में लगा दो, अगर मन की शक्ति है तो अच्छी तरह से बाबा को याद करो। मन की शक्ति से खूब सेवा होती है, प्रकृति की सेवा, तत्वों की सेवा, व्यक्तियों की सेवा, जहां सेवा करना चाहो। मन मनाभव हो जाओ, मन को एकाग्र कर लो, सकाश देने की सेवा करो। धन है तो कल किसके किसने देखा क्या होगा। कई बार बाबा सुनाता है किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोल लूट जाए, किनकी जलाएगी आग, लेकिन सफल उनकी है जो खा लेंगे धनी के नाम, बाबा के नाम। तो है अगर तो ऐसा नहीं कल सोचना पड़े, अरे ऐसे ही बैंक में पड़ा रह गया, ऐसे ही आग में चला गया, ऐसे ही पानी डुबो ले गया, मैंने कुछ नहीं किया। तो अगर है तो सफल हो जाए, बाबा के काम में लग जाए, कल किसने देखा, किसके लिए रखा है। तो अगर अंदर से भावना रहेगी सब कुछ सफल करना है, सब कुछ सुहागा समर्पण करना है, बाबा तो अपने आप संभालेगा, संभालता है, अच्छी तरह से संभालता है। लेकिन जिसने पूरा बाबा को समर्पित किया है उसकी जवाबदारी बाबा लेता है। तो सभी बाबा को सामने रख करके अपने आप को संपूर्ण समर्पण करके संपन्नता को समीप ले आओ, संपन्नता अपने आप आ जाएगी। क्योंकि जब जिसको दे रहे हैं वो दाता है, जिसके आगे हम अर्पित हो रहे हैं वो खुद यूज करने वाला नहीं है, वो तो उसके कई गुना करके उसका रिटर्न करने वाला है। इसलिए समर्पणता में संपन्नता समाई हुई है। करके देखो, आप अनुभव करोगे जो चीज जितनी दी बाबा के कार्य में लगाई वो कई गुना होकर के हमारे पास संपन्न हो गई, कई गुना होकर के संपन्न हो जाएगी, आकर के कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन करेंगे तो उसका फल आपको अनुभव होगा, ठीक है। समर्पण समझ गए ना, समर्पण क्या करना है, तन मान धन समय संकल्प जो कुछ बाबा ने दिया है, संबंध जो है, ये कोई मेरे नहीं है, सब किसके हैं, बाबा आपने दिए हैं, आपके हैं। हम तो संभाल रहे हैं, हम अपनी मनमत से इसको नहीं चला सकते। आप जो कहेंगे, जैसे कहेंगे, जहां बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, हम आपके होकर के रहेंगे। तो ऐसे समर्पण बुद्धि से संपन्नता को समीप ले आना। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई, फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और आप सब अनुभव कर रहे हैं कि कितने अच्छे अच्छे खजाने हमें मिल रहे हैं। सबको अच्छा लगा ना बहुत। हाँ, इतना सरलता के साथ आपने बताया कि अभी समर्पण भाव सबका, जो भी कमी पेशी होगी वो आज समाप्त हो जाएगी, होगी ना। हम समर्पित होते तो सारा बाबा हमारा संभाल लेता है, और बाबा ही संभालेगा तो ही ठीक है, हमारे में तो ताकत ही नहीं है। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई। और राजू भाई का परिचय तो पहले मिला ही है, और आप बचपन से ही जैसे बताया कैसे साकार बाबा मम्मा की पालना, हम लोग बोलते थे मुरली वाले राजू भाई तभी क्योंकि इतने सारे खजाने जो ढूंढ ढूंढ के राजू भाई सब सेंटर पर भेजते और पत्र पुष्प भेजते, बहुत खजाने जानकी दादी, नौसे दादियों से इकट्ठा करके स्वयं उसमें ढूंढ ढूंढ के दादी से वेरीफाई करा के और फिर सेंटरों पर बरसों से लेकर के आप भेजते ही रहते हैं तो आपके दुआओं का खजाना जो है वो बहुत बहुत जमा हो चुका है। और अभी तो बेहद की सेवाओं में है, आपका विंग भी है और बाकी तो हमारे वरिष्ठ भाई बहन सब पूरे विश्व के अंदर भ्रमण करते रहते। कल शायद आप कहाँ जाने वाले हैं?
नेपाल जा रहे हैं।
तो इन्हों का पांव तो उड़ती कला में रहता ही है, तो इसलिए आज इन्होंने हमें चांस दिया, बहुत अच्छा लगा। ओम शांति।
अभी 5 मिनट के लिए सब इस देश से डिटैच होकर के बैठो, योग करके फिर फ्रेश होके फिर योग करना।
हाँ, फिर मैं इसको भी कुछ 2-3 बातें बतानी है।
तो 5 मिनट योग करके एकदम सरेंडर करके बाबा को बैठ जाओ, ज्यादा बुद्धि नहीं चलाना है। मैं बाबा का, बाबा मेरा।
जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले, जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवा।